आगे चिंतन करेंगे, सब माताओं को भी हिस्सा लेना है उसमें, ठीक है। इसलिए आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे जा करोगे। गीत ने क्या कहा, हमारे भाग्य की महिमा की ना, भगवान के प्यार में पल रहे हैं, है सचमुच ऐसा है क्या? ऐसा संध्या बहन बहुत प्यार में पल रहे हैं, परिवारों में भी जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है उनका जीवन कुछ और होता है, और जिन्हें डांट मिलती है सदा ही उनका जीवन कुछ और होता है। प्यार से बच्चे आगे बढ़ते हैं या डांट से? माताओं को अनुभव होगा ना, पढ़ो पढ़ो उनपे डांट डपट करते रहे वो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पहले तो डंडे होते थे ना टीचर्स के भी हाथ में। आज कोई टीचर बैठा था अभी से हमको मेरे पास, कहने लगा कि सबसे ज्यादा दुर्गति संसार में शिक्षकों की हुई है, कि अगर शिक्षक महान बन जाए तो ये संसार सुधर सकता है, और अति दुर्गति है शिक्षकों की। मानसिक स्थिति उनके विकारों से भरपूर, व्यसनों से भरपूर, गुरु जैसा कोई लक्षण उनमें नहीं है। तो हमें पालना मिली स्वयं भगवान की, गाइडेंस भी उसकी मिली है, बहुत अच्छी गाइडेंस समझती माताएं। मार्ग दिखाया है बाबा ने, राह दिखाई है, हर चीज की राह दिखाई है, जिसे हम श्रीमत कहते हैं। तो आज पहला चिंतन करेंगे, दो चिंतन हमें करने हैं आज, और ये दोनों चिंतन बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि चिंतन शक्ति भी हम सबके पास होनी चाहिए। चिंतन शक्ति के बिना क्या नुकसान होता है? पहले चिंतन पे चिंतन कर लें सुशील भाई। हाँ, पहला नुकसान व्यर्थ बहुत चलता है। दूसरा नुकसान, ज्ञान हजम नहीं होता, और हजम नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? शक्ति। ज्ञान में भी बहुत शक्ति है, ज्ञान बल। जैसे योग बल है वैसे ज्ञान बल भी है, लेकिन ज्ञान अगर चिंतन में नहीं आता तो हजम नहीं होगा, शक्ति नहीं बनेगी। किसका उदाहरण देते हैं बाबा? गाय का। और एक उदाहरण देते हैं, एक और देते हैं, भोजन जब हम खाते हैं और वो हजम होता है तो शक्तियाँ बनती हैं, और भोजन हजम न हो किसी को तो शरीर भी, किसी को उल्टी होगी, अनेक कठिनाइयाँ हो जाती हैं। ज्ञान हजम हुआ शक्ति बन गया, नहीं तो वेस्ट। और ज्ञान चिंतन से समय पर ज्ञान की मुख्य बातें याद आएंगी, अगर ज्ञान चिंतन में नहीं होगा तो बुद्धि में समाएगा नहीं। देखो दो शक्ति है हमारे पास, मन और बुद्धि। चिंतन करेगा मन और उसका सार चला जाएगा बुद्धि में, बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती चलेगी। जिनका चिंतन नहीं उनकी विवेक शक्ति बढ़ती नहीं है। और इस टाइम हम चिंतन की आदत डालेंगे तो द्वापर युग के बाद भी जब पढ़ा करेंगे तो चिंतन हुआ करेगा। तो हमें पहला मनन चिंतन करना है आज, बाबा से हमें क्या क्या भाग्य मिले, क्या क्या पाया है हमने उससे। बाबा की मूल्यों में दो बातें आती हैं, भगवान और भाग्य। याद करो आती ना, अव्यक्त में बहुत आया है। बाबा को याद करने के साथ उसके द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उसे भी याद करो। तो पहला भाग्य मिला स्वयं भगवान मिले, पिछले संडे को था, घर बैठे भगवान मिल जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। सबसे बड़ा भाग्य, इससे बड़ा तो भाग्य कोई होता ही नहीं। पहला भाग्य और सर्वश्रेष्ठ भाग्य, भगवान मिला तो क्या क्या साथ लाया, खाली नहीं आया है। पहले लाया पहला ज्ञान, पहले आते ही दिया ज्ञान, सारा ज्ञान दे दिया तुमको, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान जो आज तक छुपा हुआ था, किसी को जिसका पता नहीं था, संपूर्ण ज्ञान जिससे हम परिचित हैं। दूसरा भाग्य मिला ज्ञान, तो हमारी सत्य की खोज समाप्त हो गई। मैं पहली बार जब पूना में गया तो मैंने सुना था पूना में भी बहुत अच्छे विद्वान रहते हैं, तो मुझे बताया यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही है जिसमें 1100 स्कॉलर काम करते हैं, वेदों पे, शास्त्रों पे, दर्शनों पे, गीता पे, सत्य की खोज में। लेकिन सत्य कहाँ है ये तो हम जानते हैं ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं आजकल बहुतों के किस्से सुनता हूँ, मेरे पास माताएं आती हैं, हमारा लड़का PhD कर रहा था, अचानक ब्रेन में गड़बड़ हो गई। क्यों? मुझे याद है आज भी एक माता आई उधर की, आसाम की, मेरा लड़का बहुत होशियार पढ़ने में, PhD कर रहा था, ब्रेन को पता नहीं क्या हो गया। क्या है ये बोलो भाई लोग, उत्तर दो। नहीं कुछ और है? नहीं कुछ और बोलो। सबको ये बात मालूम रहनी चाहिए ना, इस समय अनेकों की बुद्धि की शक्ति हो गई है कम और इस पे दबाव डाला जाता है ज्यादा। PhD में ये पढ़ो वो पढ़ो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो दबाव जब ज्यादा पड़ता है तो ब्रेन असंतुलित हो जाता है। ये कईयों के साथ होने लगा है क्योंकि इस समय का प्रभाव बहुत बुरा है। दो चीजें बताता हूँ, एक और तभी ये शर्म की बात है। दूसरा एक व्यक्ति था उसी ग्रुप में जो कैंसर का सर्जन है, साउथ के हैं, अहमदाबाद में हैं, तो यहाँ आए थे ज्ञान सरोवर में, उसकी युगल ने ज्ञान लिया तो मेरे को बताया कि ये रिसर्च कर ली गई है कि अगले कुछ ही सालों में कैंसर इतना ज्यादा फैलने वाला है कि सारा संसार उससे परेशान हो जाएगा। जैसे डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही कैंसर महारोग बनने वाला है का वश। हालांकि उस भाई को डॉक्टर को भी पूरा ज्ञान नहीं, अभी कांटेक्ट में ही है, पर कहने लगा बस लग रहा है विनाश का समय पहुंच रहा है, कोई इलाज नहीं हो पाएगा इन सब का। तो हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं, उसने हमें बहुत बड़े भाग्य दिए, सत्य ज्ञान की सौगात लेकर वो आया है, ये हमारा दूसरा बड़ा भाग्य। बाबा के सभी बच्चों के चेहरों पर सत्य ज्ञान पाने की चमक भी रहती है कि कुछ खोज नहीं है ना, ये करें या ये करें, इस गुरु के पास जाएं या इस गुरु के, गणेश की पूजा करें या हनुमान की, कौन सा बड़ा है, ये सब झंझट खत्म हो गए ना भक्ति में, ये सब बहुत चलते। विष्णु की करें या शंकर की करें, कोई कहता श्री कृष्ण बड़ा है, कोई कहेगा महादेव बड़ा है, लोग परेशान रहते हैं इसमें। फिर लोगों ने क्या कर दिया आजकल, सबके मंदिर एक ही मंदिर में बना देते हैं, सब पे जल चढ़ा दो, झगड़ा खत्म, कंफ्यूजन खत्म, कोई नाराज ही नहीं होगा तुमसे, सब पे चढ़ा दो फूल। बन गए ना बहुत मंदिर ऐसे बन गए जिसमें सबको रख देते हैं। तीसरी सौगात, तीसरा बड़ा भाग्य बाबा लेकर आया है हमारे लिए। बोलो ठीक बोले, ताज और तिलक, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारी निश्चित कर दी उसने, निश्चित कर दिया आते ही, जो मेरे बन गए मुक्ति और जीवन मुक्ति निश्चित, उनका जन्म से अधिकार मिलेगा ही, ज्यादा लेना हो पुरुषार्थ कर लो, मिलना तय। कितनी बड़ी चीज हो गई, बाबा ने जैसे कभी बाबा सीन दिखाया करते थे, सामने सिंहासन है, ताज रखा है, जिसको चाहिए जाकर बैठो, लेकिन सब नहीं साहस कर रहे हैं वहाँ बैठने का, सीन दिखाते थे बाबा शुरू में। तो ये भाग्य लेकर आए बाबा हम सब के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ बाबा क्या चीज है, कोई उसका थोड़ा सा भी ज्ञान ले ले, चल तुम भी स्वर्ग में, थोड़ा सा ही लिया ना, फिर नहीं लिया कोई बात नहीं, चलो स्वर्ग में चलो। एक बार मेरा बाबा तो प्यार से कहा, थोड़ी बहुत पवित्रता अपनाई, थोड़ा बहुत सहयोग दिया यज्ञ में, फिक्स हो गया, चलो तुम भी, सब माल तुम्हारा भी। कितना अच्छा हमारा बाबा। चौथा भाग्य, सोचो क्या क्या मिला हरगोविंद, क्या मिला, सोचोगे बहुत चीजें हैं, सर्व खजाने मिले हैं, हाँ उसमें तो चल रहे ये सब बातें, खुशी मिली, सुख शांति मिली, दिव्य बुद्धि मिली, अब चलाओ बुद्धि को आगे, माताएं रोज वरदान मिलते हैं, बोलो चेयरमैन, चेयरमैन तो अच्छा सुनाएंगे ना, बोलो क्या क्या मिला माताओं को, हैं? विश्व कल्याणकारी का कार्य दे दिया, काम भी तो बहुत बड़ा दिया है ना, हमें भी इतना बड़ा बना दिया कि विश्व कल्याण करने का काम दे दिया। भाई बोलो अब चिंत बता, शक्तियां बहुत दे दी, और उसमें भी शक्ति दी माया को जीतने की, विघ्नों को जीतने की, टोली और ब्रह्मा भोजन भी मिला, बहुत अच्छा। और बोलो दिव्य, हाँ जीवन को बदलने का एक मार्ग मिला, संसार में आप देखो कहीं भी कोई भी अपने जीवन को बदलने की नहीं सोच रहा है, पैसा कमाना है या पढ़ना है, इसके अलावा कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमें अपने संस्कार बदलने हैं, बोलने का तरीका बदलना है या व्यवहार को ठीक करना है, कोई नहीं सोच रहा है। ये बहुत बड़ा भाग्य हमें मिला है। और बोलो बीच वाले भाई, ज्ञान हो गया, आगे चलो। हाँ, भगवान मिला तो बाप टीचर सदगुरु के रूप में, बल्कि सर्व संबंधों के रूप में मिल गया, वो हमारा हो गया, ये भी हमें बहुत बड़ा भाग्य मिला। हाँ, निश्चिंत जीवन मिला, निश्चिंत जीवन मिला, एक सुंदर संकल्प मिल गया कि हमारी चिंता तो स्वयं भगवान करते हैं। बहुत बड़ा संकल्प मिल गया ना, ऐसा संसार में संकल्प किसी को नहीं मिला होगा। पुकारते हैं प्रभु जी मदद करो, लेकिन हमें मदद कर ही रहा है। इसे संदेह को बाबा ने कह दिया था, जो बाप की याद में रहते हैं, बाप का हाथ सदा उनके सिर पर रहता है। कितना एक धैर्य जीवन में, एक शांति कि हमारे साथ तो भगवान है। मनुष्य को याद करते हैं जब समस्या आती है, और हमारी याद पहुंचती है सीधे ऊपर। और बोलो क्या भाग्य मिला, चाबी मिल गई या खजाने मिल गए? चाबी भी मिल गई और खजाने भी हमारे। चाबी मिली माना खजानों पे ताला लगा के दिया बाबा ने, खजाने अंदर ताला लगा दिया और चाबी दे दी। ऐसा किया, सारे खजाने ही हमें दे दिए हैं। और बताओ नंदू भाई, खैर हम नंदू भाई बोलेंगे, बेहद का परिवार मिला, सुखी परिवार है या गड़बड़ है? बहुत अच्छा परिवार है। हम अगर इस परिवार को इस नजर से देखें कि महान आत्माओं का परिवार मिला है, इस देव देवियों का परिवार मिला है, जो देवकुल की सब आत्माएं थी वो सब इकट्ठी हो गई, उनका परिवार मिला है, तो अपने भाग्य को याद करते हुए और भाग्य के साथ भाग्य की रेखा खींचने की कलम ही मिल गई। लो, जितनी चाहे खींच लो, लिख लो, जितना लिखना है अपना भाग्य। कितनी बड़ी बात हो गई। माताओं को अगर एक काम दे दे कोई, भगवान काम दे दे, तुमको चार बच्चे हैं, तुम्हें इनका भाग्य लिखना है, लो कागज और पेन, ये पेन जितना चाहे लिख दो, वही मैं तथास्तु कर दूंगा, तो माताएं क्या लिखेंगी, क्या होता है वो? अच्छा अच्छा आपको चार बच्चे हैं, उनका भाग्य लिखना है आपको, कलम दे दी भगवान ने और गारंटी दे दी, जो तुम लिख दोगे मैं स्टैंप लगा दूंगा। सब अलग अलग बात बता रहे हैं। भाग्य लिखना है आपका उनको 5,000 साल का। आज रात को सोच लेना क्या लिखूं, 5,000 साल का लिखना, एक दिन का नहीं। तो बाबा जिनका लोग कहते हैं ना भगवान ने भाग्य लिखा, तो अगर भगवान भी भाग्य लिखता तो क्या वो अपने बच्चों का खराब भाग्य लिखता? हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य भी अपने बच्चों का खराब भाग्य नहीं लिख सकता, तो अगर कोई ये भी माने कि भगवान ने भाग्य लिखा है, तो वो तो परफेक्ट लिखेगा। गड़बड़ किसने कर दी, किसने? हम सब ने गड़बड़ कर दी। माया को क्यों दोष देना, गड़बड़ तो उनकी, माया परेशान होगी कि गड़बड़ खुद करते हैं, नाम बदनाम मेरा करते हैं। तो अपने भाग्य को याद करेंगे, कल सवेरे उठते ही बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, भगवान मिला और सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिला, उसकी पालना मिली, उसका प्यार मिला, उसका ज्ञान मिला, उसकी शक्तियाँ मिली, बस ऐसे याद कर लेना। जो कुछ उसके पास है वो सब हमें मिला, उसकी शक्तियाँ मिली, उसका वरदान मिला, उसने संपूर्ण शांति दी, सुख दिया। मिला सुख, सुख मिला या नहीं? मिला ना, सारा सुख मिल गया। अगर किसी को दुख होता है तो कारण विस्मृति। अब दूसरा चिंतन करेंगे, बहुत अच्छी तरह चिंतन करना। आज मैं केवल चिंतन कराता हूँ आपसे, और इसको अपने अंदर समा लेना। मुझे याद आया एक बार दादी हम लोगों की क्लास कराती थी ना, मधुबन वालों की, तो यही क्लास करा रही थी। तो क्लास हुई स्वमान पर, कि सब एक एक स्वमान की पॉइंट सुनाओ, 50 से 50 सुनाई। एक क्लास हुई सत्यलाल को याद हो, बाबा राम को याद आ जाएगा, किन किन चीजों में संतुलन रखना चाहिए। कितनी बातें निकली होंगी, 52 याद रहती है वो बात, 52 बातें निकली जिनका जीवन में संतुलन होना चाहिए। न्यारा प्यारा, याद, सेवा, लव एंड लो, गंभीर, रमणी, कैसी। आज मुझे ख्याल आया कि हम भी आज मनन कराएंगे। अब दूसरा मनन, ये भी दादी कभी कभी कराती थी, मूल्य के समय करा देती थी। बाबा ने हमें क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई हैं, तो मनन के साथ उन स्मृतियों को अपने अंदर भी लाएंगे। पहली स्मृति, बहुत सारी पॉइंट्स निकलेंगी इनमें, मैं कौन। पहली स्मृति, मैं कौन, हम अपने को क्या समझते थे और बाबा ने क्या बता दिया, तुम ये नहीं हो, तुम ये हो। पहली स्मृति। चलो दूसरी, भाई बताएंगे, तीसरी बहने, नंबर बार, मेरा कौन। इसके उत्तर बहुत सारे हैं, मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन। चलो माताएं बताएं, सब माताओं का नंबर है। याद क्या दिलाया, हम ही पूज्य थे। याद दिलाया, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। चलो भाई लोग पूर्वज थे नहीं हम पूर्वज हैं, ये याद दिलाया। इसमें आगे भी जोड़ा, पूर्वज हो तो क्या, तुम्हें सबकी पालना करनी है। बहुत बड़ी चीज, हमें छोटे से बड़ा बनाया, याद दिला दिला के। तुम पूर्वज हो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें केवल अपने लिए नहीं सोचना है, तुम्हें जग की पालना करनी है। तुम पूर्वज हो। मैंने पीछे वालों को बोलना, तुम विश्व कल्याण कार्य हो, इससे जुड़ा हुआ बिल्कुल, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, ये बड़ा काम तुम्हें करना है। ये बहुत ऊंची स्मृति है, छोटी नहीं, विश्व कल्याणकारी है। इसकी फीलिंग यदि हमें रहे तो हमारे विचार, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति बहुत महान हो जाएगी। चलो फिर बीच वाले भाई, खैर अभी आगे वालों का पूरा करें, बीच वाले बोलो हैं? फिर से हाथ उठा के जोर से बोलो, जरा बोलो, थर्ड करो, हमारा संस्कार। पवित्रता का है, ये याद दिलाया तुम परम पवित्र आत्माएं हो, तुम्हारा मूल संस्कार पवित्रता का है। अब माताएं प्रीत वाली, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, ये याद दिलाया, ये बहुत बड़ी स्मृति है। चलो भाई अब पीछे बोलो, बहुत कुछ है अभी तो। हम कहां से आए हैं, ये भी याद दिलाया। हमारे लिए ये बहुत छोटी सी बात है, परंतु ये बहुत बड़ी चीज है। संसार की किसी भी फिलोसोफी में, किसी धर्म ग्रंथ में ब्रह्मलोक का, वो आत्माओं का स्थान है इसका, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं और वहाँ से नंबर वन नीचे आते हैं, वहाँ सब धर्मों के अलग अलग सेक्शन हैं, एक धर्म की आत्मा दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकती, ये बड़ा गुह्य ज्ञान सहज रूप से याद दिला दिया। बहुत बड़ी चीज है ये, ये छोटा ज्ञान नहीं है, ये कमी नहीं है। किसी बड़े से बड़े विद्वान को, शंकराचार्यों को इसका कुछ पता नहीं है, मूल वतन का, मुक्ति में हम कहाँ जाएंगे इसका। चलो अब माताओं का नंबर पीछे। हम कल्प वृक्ष का तना है, बहुत अच्छा। फिर माताएं बताएं आगे, इसमें जोड़ दें, मैं जगत माता हूँ। वेरी गुड, ठीक है बेटी, माताओं को नशा चढ़ने लगा खूब। चलो भाई बताओ, कोच वाले आगे वालों ने कुछ नहीं बताया। जगत पिता तो एक ही है भाई। ओ बाबा ने भाइयों को टाइटल नहीं दिया। तुम विश्व रक्षक हो, हमारे पूज्य स्वरूप की स्मृति दिलाई, और एक बड़ी स्मृति क्या दिलाई, जो रोज दिलाते हैं, खेल षष्ठी चक्र का पूरा हुआ, अब तैयार हो जाओ, बस तुम जाना चाहो या न चाहो। पीछे क्या कहा था सुशील, तुम्हारे शरीरों को आग लगा के, तुम्हारे शरीरों को आग लगा के तुम्हें ले जाऊंगा। तो बाबा के सिवाय कोई ये कह ही नहीं सकता ना दुनिया में, कहना भी अपशगुन मानेंगे, भाग जाएंगे लोग, ये इनका गुरु क्या कह रहा है, भागो यहाँ नहीं आना है। बाबा ने याद दिलाया, अब घर चलने का समय आ गया है, खेल पूरा हुआ, तुमने बहुत दुख देखे बच्चे, तुम्हारे पास अथाह धन था, बाबा ने याद दिलाया, कल भी मुरली में था, तो कीचार धन था, कीचार समझते ना, हिंदी शब्द है, अथाह अकीचार धन था तुम्हारे पास, तुमने सब क्या कर दिया, वो सब खो दिया, तो सब याद दिलाया बाबा ने। और भी कुछ याद दिलाया, तुम कल्प कल्प के विजय रतन हो, बहुत सुंदर चीज है ये, याद आते ही विजय के संस्कार जग जाते हैं, ये बहुत सुंदर स्मृति है, इस पे सभी काम करेंगे थोड़ा। मैं जन्म जन्म का विजय, कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। बोलो क्या बोला सुशील, तुम्हारा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। अभी दो चार दिन पहले मुरली में था, बाप तुम्हें जितना बड़ा समझते हैं, तुम अपने को नहीं समझते, याद दिलाया है बार बार। देखो मैं एक बात सुनाऊं, यहाँ बाबा आते थे ना, यहाँ बैठते थे हम लोग, यहीं बैठते थे, बड़े अच्छे अच्छे सीन देखे अव्यक्त बाबा के, हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे, पास पास बैठते थे, उससे भी पास कहाँ बैठते थे, बाबा के कमरे में बाबा आते थे, बिल्कुल पास बैठे होते थे, तो मैं बाबा को हमेशा एक नजर से देखता था। कौन सी नजर? वो मैं सोचता था कि भगवान हमारे सामने बैठ, ये सब बाबा की बातें सुनते थे ना, मैं तुम्हें कितनी ऊंची नजर से देखता हूँ। तो मैं सोचता था बाबा जब अब हमें देख रहा होगा सामने बैठकर, तो सोचता होगा ना ये कितने महान हैं। परंतु पता नहीं इसकी इनकी समझ में कब आएगा। कितनी बार मैंने इनको याद दिलाया है, तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, ये अब तक समझ ही नहीं रहे। हजार बार तो बता दिया है, फिर यही इनकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। मैं सोचता था बाबा के सामने बैठ के, तो स्मृति आती थी कि जिस ऊंची नजर से बाबा हमें देख रहा है, उसी ऊंची नजर से हम भी अपने को देखें। मैं सोचा करता था कि बाबा जब बैठा है, दृष्टि दे रहा है, तो कुछ तो सोचता होगा ना, जब थोड़ा ही है वो। ज्ञान का सागर, एक एक को जानने वाला, सबके आदि मध्यंत को जानता है। हाँ नहीं, मैं सोचता था कि बाबा क्या क्या सोचता होगा। कोई कोई पूछ लेते थे बाबा आप क्या सोच रहे, हम तो इतने खुले नहीं थे ना बाबा से, छोटे थे, पर कोई कोई पूछते थे। मैंने सुनाया था ना एक बात, फिर सुना दूं, बहुत अच्छी है, इसी और की बात है। तो कोई ना कोई दादी सबसे मिलाने के लिए वहाँ रहती थी, तो बाबा को मुरली चलाने के बाद जूस दिया जाता था। जैसे आजकल मुरली होती है ना, आप देख रहे हैं छोटी सी मुरली, फिर पार्टियों से मुलाकात, दादियों से मुलाकात, तो छोटी मुरली जैसे पूरी होती थी, बाबा को एक गिलास दूध जूस दिया जाता। जूस दिया बाबा के हाथ में, बाबा ने उसे दृष्टि दी। तो जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे ना, तो पास में बैठी थी सील दादी। सील इंदिरा को पुराने जानते हैं, बॉम्बे की, जिनको बाबा बॉम्बे का गवर्नर कहते थे। बहुत गुली मिली थी बाबा से, जैसे बच्चे रहते ना बाप के साथ, ऐसे रही थी। तो जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे ना, उसने फट से पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? बिल्कुल इसी टोन में, इसी टोन में पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? क्या उत्तर दिया? ये उत्तर बहुत सुंदर है, राग भरा उत्तर। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया, दोनों बैठे थे ना, जूस तो ब्रह्मा बाबा को पीना था, शिव बाबा ने उत्तर दिया, इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। देखो कितना बड़ा सीक्रेट है ये हम सब के लिए। तो वो तो हंसी में कहा उसने, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा रहस्य मुझे मिला कि स्मृति स्वरूप होने के बाद योग लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। तो जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, उसको हम याद करते 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 उसका स्वरूप बन जाए। फिर बाबा की मुरली में एक ऐसा ही जुड़ा हुआ महावाक्य आ गया, स्वमान, संपूर्ण स्वमान में स्थित होना ही संपूर्णता है। तो ये बातें मिलती गई, जिन्होंने ये बात समझा दी कि योग के साथ साथ हम स्मृति स्वरूप होने का, स्वमान में स्थित रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करें। फिर बाबा ने उन्हीं दिनों सात स्मृतियां सुनाई मुरली में, लिखाई एक्चुअली को, और कहा एक एक को सात सात दिन तक याद करो। 49 डेज का एक सुंदर प्रोग्राम दे दिया, एक स्मृति को 7 दिन, और बहुत बार लानी है अंदर में, और ऐसी 7 स्मृतियां लगातार करनी है। तो मुझे उसमें बहुत रुचि थी तब, तो मैंने उनको बहुत सीरियसली किया। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा वो अभ्यास था, आ जाएगी मुरलियों में रिपीट होकर कभी भी। तो स्मृति स्वरूप होना है हमें, सभी कुछ स्मृतियों की अपने पास लिस्ट रखें और उनकी प्रैक्टिस करें। स्वमान भी तो स्मृतियां है ना, सारी याद दिलाया हमें कि जैसे ही तुम मेरे बच्चे बने मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। ये भी याद दिलाया ना, हम भूल जाते हैं, ये भी याद दिलाया जो गीत में था, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, मेरी हजार भुजाओं की छत्र छाया तुम्हारे सिर पर है। ये सब याद दिलाया, तुम अकेले नहीं हो, सदा साथ ही साथ है। पिछले संडे की मुरली भी ऐसी थी, युगलों से बात किया, कुमारों से किया, साथी की बात की थी ना बहुत ज्यादा, युगलों से क्या कहा था, युगलों को याद है, अकेले बनो और फिर। तो कुमार सुना रहे, मैं युगलों से पूछना चाह रहा हूँ, कुमारों ने ज्यादा नोट की ये बात, मैंने भी नोट कर ली थी अच्छी तरह। दो है ना युगल, दो है ना पति पत्नी, तो बाबा ने कहा अकेले बनो फिर साथी बनाओ। जो युगल हैं वो बने एक दूसरे के सहयोगी, और साथी बनाओ बाबा को। हाँ, ये बहुत अच्छे, देखो बाबा किस तरह टीचर बन के पढ़ाता है कि स्त्री पुरुष को एक दो का सहयोगी होना चाहिए। आजकल घरों में क्या है, सहयोगी कम, झगड़े करने वाले ज्यादा, तो मुश्किलात हो जाती है ना सबको। लेकिन बाबा इतना सुंदर ढंग से हमें ये चीजें सिखाते हैं। तो स्मृति दिलाई, तुम्हारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है, विघ्न विनाशक तुम ही हो, तुम्हें किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ये सब स्मृतियां दिलाई हैं, तो इससे बहुत अच्छा सभी काम करेंगे अपने लिए, ज्यादा नहीं तो पांच पावरफुल स्मृतियां रख लें। जैसे खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें वापिस जाना है, याद दिलाया, जो कुछ इन आँखों से दिखता है वो अब नहीं रहेगा, ये याद दिलाया, ताकि वो खेल होने पर हमें ऐसा न लगे ये क्या हो रहा है, पहले ही याद दिला दिया ये होने जा रहा है। तो जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना ही समर्थी स्वरूप बनेंगे, उतना ही, और भी बोलो, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और बोलो, स्मृति स्वरूप होने से एक बहुत बड़ी स्थिति आएगी, वो है नष्टो मोह। जो जितना स्मृति स्वरूप बने वो उतना ही नष्टो मोह होंगे। मैं कहानी सुना दूं श्रीमद् भगवत गीता की, जो उसमें दिखाया है लेखक ने, जो एक लिंक जोड़ा है कि अर्जुन को मोह हो गया और वो युद्ध के लिए मना करने लगा। वैसे अर्जुन को मोह हो नहीं सकता था, सामने वो खड़े थे जिन्होंने उन्हें बहुत कष्ट दिया था, उन्हें देख के मोह कैसे हो सकता था। ज्ञान दिया जा रहा है तुम आत्मा हो, ये हो वो हो, अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हो रहा है। फिर आखिर क्या हुआ, अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, और विराट स्वरूप में एक विशेष बात दिखा दी कि मैं महाकाल हूँ, और महाकाल के मुंह में वो सब जा रहे हैं, भीष्म भी जा रहा है, द्रोणाचार्य भी जा रहा है, सारे कौरव भी जा रहे हैं, बहुत सारे पांडवों की सेना के महारथी जा रहे हैं, और बता दिया तुम इन्हें यदि नहीं भी मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि मैं महाकाल बनकर आया हूँ। उसके बाद अर्जुन को ख्याल हुआ, स्मृति आ गई और ज्ञान देने के बाद दिखाया लास्ट में मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो स्मृति आने से ही मोह नष्ट होगा। सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना अपना भाग्य है, अब सबको घर जाना है, सब कुछ छोड़ कर जाना है। अगर ये याद रहेगा तो वस्तुओं से भी मोह नष्ट हो जाएगा और व्यक्तियों से भी, बच्चों से भी। वो आत्माएं हैं सब। मैं गीता की ये बात याद दिला दूं, किसी को समझाने में काम आएगा। अपना विराट रूप दिखाने के बाद जो एक सुंदर बात कही है ना गीता में, वो सुनाई जा सकती है सबको। हे अर्जुन, मेरा ये दिव्य स्वरूप तुम्हारे बिना पहले किसी ने नहीं देखा है, न वेदों से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न पुण्य से, मेरा ये स्वरूप देखा नहीं जा सकता। तो जो वेद वाले हैं उनको हम बता सकते हैं कि भगवान स्वयं आकर जब सत्य ज्ञान देता है और अपना दिव्य स्वरूप दिखाता है तभी उसको देखा जा सकता है, वेदों शास्त्रों दान पुण्य भक्ति से नहीं। तो कल सवेरे उठते ही अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करेंगे और ये अच्छी तरह जान लें, जिन्हें ये बहुत याद रहेगा मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, वो क्या बन जाएंगे? मास्टर भाग्य विधाता। स्वयं भाग्यवान होना एक बात, लेकिन दूसरा दूसरों को भाग्य देने वाले बन जाना, ये है बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो जो भाग्य के नशे में ज्यादा रहेंगे वही मास्टर भाग्य विधाता भी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखना है और उसको पहचानना है। हो क्या रहा है ब्राह्मणों के साथ कि ये सारे भाग्य सबको मिले हैं, लेकिन स्मृति न होने के कारण ऐसे रहते हैं जैसे कुछ मिला ही नहीं, उसका नशा रहता ही नहीं। छोटी छोटी बातों में उलझ जाती है आत्मा, जो बड़ी चीजें हैं वो छूट जाती हैं। अगर याद रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, मुझे विश्व की पालना करनी है, तो छोटी छोटी बातों में आत्मा अटकेगी नहीं। अटक तब रही है जब अपने महान स्वरूप की स्मृति नहीं है। इसलिए बाबा कहा करते थे, सकाश देने में इतने बिजी हो जाओ तो विघ्न और समस्याएं व्यर्थ, तेरा मेरा सब आपे छूट जाएगा। तो सकाश देंगे हम सारे संसार को, पिछली बार भी मैंने कहा था यहाँ, 10-10 मिनट सवेरे और शाम यज्ञ को भी निर्विघ्न रखने के लिए और संसार को भी दुखों से मुक्त करने के लिए सकाश सबको अवश्य देनी है। ये बात भूलनी नहीं है और यही सबसे बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य। तो ये पुण्य करते हैं उनके दुख तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो कल उठते ही सब ये याद करना। आज तो ओनेस्ट इसको ही कहा ना, एक जगह बैठने वाले ओनेस्ट नहीं। चलो।